आज की सभा देख के मेरे को तो ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे मैं ज्वेलर शॉप में खड़ा हूँ। हमारा साकार बाबा भी ज्वेलरी का बिजनेस करते थे, वो कहते थे अभी भी मैं ज्वेलरी हूँ। एक एक ज्वेल, एक एक आत्मा को कहाँ कहाँ से चुन चुन के निकाल निकाल के और उनकी कितनी मालिश और पालिश करके उनको चमका रहा है। कई बार हम बच्चों की बाबा कितनी महिमा करते हैं कि मीठे से खिलते बच्चे, क्लब के बिछड़े हुए मेरे बच्चे मेरे को मिले हैं, तो मैं एक एक बच्चे को देख के कितना खुश होता हूँ। इस आत्मा का सौभाग्य है कि कई बार बाबा सिर्फ मेरा ही होता था, सभी बाबा से बैठ के चिटचैट करते थे, तो कभी कभी मैं पूछता था बाबा आप हमको सिखिला दिया है या हम आपको सिखिला दिया है। आप तो ऊपर बैठे देख रहे थे कि मेरे बच्चे कैसे दौकों से लेकर के नीचे उतरते जा रहे हैं उतरते जा रहे हैं, लेकिन हमको तो पता ही नहीं था आपका। हम तो ऐसे ढूंढ रहे थे कि कण कण तक जाके पहुंचे कि हमारा बाबा कहाँ है। आप तो फिर भी हमको देखते थे, जानते थे कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमको जितना आप हमको सिखिला दिया है, क्योंकि हमको बिल्कुल पता नहीं था और आप हमको मिले हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी हमको होनी चाहिए या आपको होनी चाहिए। आपको तो फिर भी पता था, आप तो जानते हैं, लेकिन हम जो बिल्कुल घुमा के बैठे थे और कहाँ कहाँ ढूंढते थे, तो वास्तव में हम अपने सौभाग्य को देखें तो बाबा हम बच्चों के सौभाग्य को देख के खुश होता है और हम भी अपने सौभाग्य को देख के खुश होती है कि कहाँ कहाँ भूले भटके फिर से आके बाप की गोदी में पड़े हैं। एक वाणी में बाबा ने कहा था कि ये जैसे गोदी का गोदाम है, जैसे गोदाम में माल रखा जाता है ना, तो ये गोदी कितनी बड़ी है, कितने बच्चे इस बाप की गोदी में आते हैं और बाप से आके मिलते हैं, तो बाबा एक एक बच्चे को देख के इतना ही हर्षित होते हैं। आप तो कोई कहां से बाप ने ढूंढ ढूंढ के अपने रत्नों को निकाला है, और आज आपको दादी ने भट्टी में बुलाया है। भट्टी नाम तो हमारे लिए बहुत पुरानी है, आपने सुना होगा बाबा ने भी हमको एक दिन पांच दिन सात दिन नहीं 14 वर्ष भट्टी में डाला। इन दोनों में हमको पता नहीं था कि इतनी सेवाएं होनी है, इतना देश विदेश में संदेश पहुंचेगा और इतने बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ से निकल निकल के आएंगे, क्योंकि पहले बाबा का असूल ही था बच्चों को पहले लायक बनाओ। भाषण तो बहुत करती है, सेवाएं तो बहुत करती है, सत्संग तो बहुत करती है, लेकिन पहले मेरे को बच्चों को लायक बनाना है, उसी लिए हर प्रकार की बाबा ने शिक्षाएं दी, तपस्या भी कराई और उस तपस्या में खुद बाबा मम्मा सामने बैठ के और जैसे दादियां अभी बहने बैठ के कमेंट्री देती है ना, वैसे बाबा खुद कमेंट्री देते थे। और जब भी वो बाबा कमेंट्री देते थे उनका क्या अनुभव बताऊं मैं, उसी टाइम ऐसे लगता था सचमुच हम सब आत्माएं एक एक ग्रुप छोटा छोटा बैठता था और एक ही कमरे में, और उस वो जो 5-8 दिन भट्टी चलती थी हम कहीं बाहर नहीं निकलते। अभी तो आप फिर भी घूमते है फिरते है, खाने पर जाते हैं, सबसे मिलते करते हैं, लेकिन उन दोनों में ऐसे भट्टी नहीं होती थी। एक तो लोग सन्मतियों से तो मिलना जुलना बंद था, वो तो कोई आते ही नहीं थे मिलने के लिए, न आने देते थे, वो तो सब जैसे जीते ही मर गए। लेकिन वहां भट्टी में भी जिन जिन का प्रोग्राम होता था वो बस एक ही कमरे में रहते थे, एक ही ब्लॉक में रहते थे, निकलते थे तो भी एकांत में पैदल करते थे, नहीं तो कोई से बातचीत करना कुछ भी नहीं। और जब भी बाबा बैठ के वो योगा अभ्यास कराते थे ऐसे लगता था जैसे हम यहाँ नहीं मूल वतन में बैठे हैं, हम सब आत्माएं मूल वतन में बैठ के उस बाप के सामने बैठ के उसी मूल वतन का परम धाम का अनुभव कर रहे हैं। कितना साइलेंट स्वीट होम है जहाँ कोई संकल्प नहीं, बस हम आत्माएं और हमारे सामने बाप चमकते हुए सितारे ऐसे बैठे। फिर बाबा कहते थे अच्छा अभी ये अभ्यास किया 5 से 7 दिन का जो प्रोग्राम एक एक ग्रुप का होता था, उसके बाद फिर सभी सेवाएं भी करते थे। और बाबा ये अभ्यास कराता था कि नीचे तुमको ये याद रहे कि हम त्याग मुहूर्त तपस्या मुहूर्त है, उसके लिए उन दोनों में एक एक ब्राह्मण का बाबा कहते थे तुमको देखो चलना है ना परम धाम में, उन दोनों में ये नहीं था कि ये इतनी निकल के सेवाएं करनी है, तब तो बाबा कहता था तुमको अभी यह कर्मातीत होना है, आगे तो विनाश आने वाला है, विनाश में तुम्हारी पक्त अवस्था होगी तो अंत मते सौ गते होगी, अगर और कोई याद आई तो फिर धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। तुमको तो चिंता लग जाती थी 6 महीने में विनाश होने वाला है, 8 महीने में विनाश होने वाला है, तुमको इतने टाइम में कर्मातीत होना है, तुम तो दिन रात इसी चिंता में इसी चिंतन में ही लगे रहते थे। ये तो पीछे जब पाकिस्तान से यहाँ आए तभी बाबा ने कहा बच्चे तुमको स्वर्ग में राजाई करनी है तो किसके ऊपर करेंगे, या पहाड़ों पर या जानवरों पर करेंगे, प्रजा कहाँ है तुम्हारी, अभी जाओ प्रजा बनो। हमने कहा ये तो नई बात हो गई, पहले तो बाबा ने बताया नहीं कि तुमको प्रजा भी बनानी है, पहले तो कहा तुमको कर्मातीत होना है। कहा बच्चे यही तो युक्ति थी तुम बच्चों को लायक बनाने की, लायक भी हर प्रकार से, वहां कोई कमी नहीं थी पाकिस्तान में जब भी हम थे तो सब प्रकार से बाबा ने जैसे प्रिंसेस की तरह हमको पाला, घुमाना फिराना, योग भट्टी भी कराना तो कर्मणा सेवा भी कराना, 36 प्रकार के भोजन भी खिलाना तो जल डोटा भी खिलाना, तो बच्चों की कोई भी बात में आसक्ति न रहे, सब बात से जितना मीठा जल डोटा लगता है, जल डोटा समझते हैं छाछ और मक्की की रोटी वो भी खिलाते थे, वो कैसा भी बीमार हो उसको भी वही खाना है, उसकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती थी उससे भी, ये एक वंडर था, यही प्रभु की प्रभुता है। और फिर प्रोग्राम आते थे, देवताएं आते थे, 36 प्रकार के भोजन भी बनते थे, लेकिन बाबा कहते थे दोनों खाने में कहीं भी आसक्ति न जा रही, ये सब बाबा अभ्यास करा देते हम बच्चों को पहले योग्य बनाने के लिए। बाबा के पास तो प्लान था ना, बच्चों को तो नहीं सुनाते थे, टीचर जानता है हमको बच्चों को कैसे लायक बनाना है। तो इतना लायक बना के जब हम यहाँ आए तभी बाबा ने कहा बच्चे अभी जाओ सेवा पर। अब बताओ ऐसे प्यारे बाबा के अंग संग रहते हुए कौन सेवा पर जाएगा, और नहीं जाते तो इतनी सेवाएं कैसे पड़ती, इतने सब आप लोग जो निकले हैं कैसे निकलते। तो बाबा जानते थे कि मेरे बच्चे कहाँ कहाँ देश विदेश में मेरे बच्चे फैले हुए हैं, उन सबको आना है। तभी धीरे धीरे बाबा ने हम बच्चों को सेवाओं पर भेजा। तो पहले शुरू में अभी तो आप लोग सेवाओं में बहुत हमसे भी बहुत प्रवीण हो गए हैं, लेकिन हमको शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों को सब जानते हैं, बहुत नाम बाला हो गया है, उन दिनों में तो कोई नहीं जानते थे। तो हम कहां भी जाते थे सेवा करने के लिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। फिर कैसे युक्तियां करते थे बताऊं, समझो कलकत्ते में मेरा लोक संबंधी उसने निमंत्रण दिया पापा के साथ जाओ सेवा करो, और सेंटर तो था नहीं, तो वहां बहने तो तीन एक तो भाई यहां कहां अकेला भी ऐसे जाते थे। अब वहां सेवा करनी है कैसे करे, कोई के पास जाते थे बिजनेसमैन के पास जाते थे, वो समझता था कोई अनाथ आश्रम के कोई आए चंदा चीरा लेने के लिए, आजकल तो जमाना वही है ना। तो मेरे भाई माफ करो अभी हमारे बिजनेस का टाइम है। हमने कहा भाई साहब हम कुछ लेने नहीं आए हैं, हम देने आए हैं। तो उसमें ग्राहक आया है कोई खरीदारी करनी है आश्रम के लिए, तब बैठ के फिर उनको सुनाते थे। तो थोड़ा बहुत सुनता था, फिर कहते थे अच्छा आपको अच्छा लगे, अभी तो टाइम है आपका, पर आपके घर भी आ गए आपको बता सकती है ये ज्ञान की बात है। या तो कभी बगीचे में जाते थे तो बहने वो झाड़ त्रिमूर्ति निकाल के मेरे को बैठ के समझाती थी, तो आने जाने वाले घूमने वाले कहते ये क्या चित्र पर क्या समझा रही है, तो वो खड़े हो जाते थे। अरे भाई साहब आप भी बैठ जाओ बहुत अच्छी बात है, तो वो बैठ के सुनते थे। ऐसे ऐसे सेवाओं की युक्तियां निकालनी पड़ती थी, तभी धीरे 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 कितनी मेहनत से सेंटर्स शुरू होते। तो ये सब कौन करा करा मना रहे हैं, कई बार हमको आता है हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन हमने देखा है जो बाबा के आज्ञा पर श्रीमत पर जो सेवा करता है कराने वाला वो बैठा है, नहीं तो मैं आया छोटा हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाला शुरू शुरू में मैं क्या जानता, लेकिन जब यज्ञ में आए जो सेवा मिलती थी हाँ बाबा, क्यों हमको निश्चय था सिखाने वाला कौन है। कभी बिजली डिपार्टमेंट मिलती थी, कभी कोई काम मिलता था, कभी खरीदारी के लिए बाबा बोलता था, तो हमको ये निश्चय था बुद्धिवानों की बुद्धि कौन बैठा है, करने कराने वाला कौन बैठा है, वो बाबा। भले कितने बंधन भी आए, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, तो भी एक बल एक भरोसे के ऊपर जब भी हम बाबा में निश्चय रखते हैं, बाबा हमारा सर्वशक्तिवान है, हम उनके बच्चे ब्राह्मण है, अभी शूद्र जीवन छूट गए, पास्ट जीवन छूट गई, अभी हमारी नई जीवन है। बाबा जो कहते हैं ना भाई कलम की शुरुआत कहां से होती है, वास्तव में ये संगम युग से ही जैसे नए कलम की हमारी शुरुआत होती है, नया जन्म जब से हमने लिया जैसे नया कलप शुरू हो गया। संगम युग में ब्राह्मण कुल, जब ही ब्राह्मण बनेंगे तब तो देवता बनेंगे ना, सीधा देवता तो कोई नहीं बन सकता है। तो ये ब्राह्मण जीवन समझो हमारे नए कलप की शुरुआत है, नया जन्म दिन जो हमारा है वो पहला जन्म यही है। जब भी हम बाबा के बच्चे बनते हैं हमारी जीवन काया कल्प हो जाती है। अभी हम उस दुनिया के जीवन से अपनी भेंट नहीं कर सकते, और बाबा भी देखते हैं कैसे एक एक रतन को कहां कहां से चुन चुन के निकाल के और उनको बैठ के ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। उस एक एक रतन की कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं कहीं, क्योंकि ये हमारा कमाई का टाइम, ये संगम युग छोटा सा ही है। ये ऐसे नहीं कि हमारी कमाई कोई सदा ही चलती रहेगी, ये थोड़ा सा समय है। इसी समय जो हम कमाई करेंगे वही हमारे को सारा कलप चलने वाली है, ना आधा कलप लेकिन सारा कलप। कई बार बाबा ने वाणियों में भी कहा है कि द्वापर में भी तुम बच्चों का अभी का जो भाग्य बनाते हो वो द्वापर कलयुग तक भी तुम बच्चों को ऐसे अच्छे जन्म मिलते हैं, जो भगत भी बनते हो, मंदिर बनाते हो तो भी तुम सुखी हो। ये तो अंतिम जन्म है जो लास्ट में शूद्र का है जिससे ब्राह्मण बनते हो। तो शुरू से लेकर के हमको बाबा ने जो बैठ के इतनी मेहनत करके लायक बनाया है तो हम बच्चों का भी क्या फर्ज हो जाता है। संशोष फादर, क्योंकि हमको बाप का शो करना है लेकिन हम तो देखते हैं कि बाप हमारा शो जास्ती कर रहे हैं। नामाचार किसका हो रहा है? ब्रह्मा कुमारी होगा। हम चाहते हैं शिव बाबा का नाम बाला करना लेकिन बाबा हम बच्चों का नाम बाला कर रहे हैं, लेकिन वो भी तभी जो हम बाप को फॉलो करते हैं। ऐसे हम समझे कि एक एक हम में से जो हम भी चले, जो भी चले, सबको बाप का साक्षात्कार हो। उसी लिए कहते हैं बाबा, कई बार कहते हैं कि जैसे बाप सुख दाता है वैसे तुम बच्चों को भी सुखदेव बनाए। कल परसों भी वाणी में था कि तुम व्यास के बच्चे सुखदेव हो, सुख देने वाले हो, क्योंकि बाबा ने हमको सुख दिया है इतना अतीन्द्रिय सुख। गोप गोपियों से जो पूछने के लिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसीलिए कि हम सुख लेवे और सुख देवे। आप में से बहुत कुछ भाई तो बहुत पुरानी है जिन्होंने बाप दादा को भी देखा है, और मेरे भी काफी नजदीक में शिवों में रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिन्होंने बाप दादा को साकार में नहीं भी देखा। तो बहन जी कह रही थी थोड़े बाप दादा के भी इस आत्मा का परम सौभाग्य है कि छोटेपन से ही बाबा की गोदी में आ गए। बाबा से जैसे ऐसे रिलेशनशिप भी थी, लोग घर नजदीक में ही थे, छोटा सा शहर था हैदराबाद का। तो जब भी बाबा को साक्षात्कार हुआ और वहां आके बाबा ने सत्संग चालू किया, तब से लेकर के हम तो छोटे थे, इसी टाइम 10-11 बरस के बच्चे थे, हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे, स्टूडेंट लाइफ थी। तो वो भी खींच के चले गए, जो कल पहले वाला अपना पार्ट बजाना था तुमको भी नहीं, तो बच्चों को तो खेल कूद चाहिए, वो सत्संगों से क्या जाने। लेकिन छोटेपन से संस्कार कुछ ऐसे थे, तो हम सुनते थे वहां पे जो जाता है उनमें बहुत परिवर्तन आ जाता है, उनका खान पान ये सब बदल जाता है। मेरा लौकिक बड़ा भाई था तो पहले हो गया तो उसमें भी बहुत सारी आदतें थी, वो सारी निकल गई। मैंने देखा ये इतना परिवर्तन आ जाता है बाबा के ज्ञान में, मैं भी जाऊं देखो क्या है। तो ऐसी क्यूरियोसिटी से हम भी सत्संग में जाने लगे, लेकिन बाबा का ज्ञान जो था इतना स्पष्ट और लॉजिकल, क्यों बाबा कोई शास्त्र वगैरह तो पढ़ के सुनाते नहीं भाई, जैसे और साधु महात्माएं होते हैं सत्संग में जाओ तो कथाएं करते हैं, उसमें कई कहानियां आती है, कहीं कुछ होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन बाबा के पास न कोई ग्रंथ था न गीता थी, कुछ भी नहीं है, बाबा ऐसे बैठ के समझाते थे। बाबा की समझाने भी कितनी सरल थी। बाबा कहते थे बच्चे देखो तुम देवताओं की पूजा करते हो, वही तो हमारे पूर्वज है, बड़े है, उनको कभी तुम जाके मंदिर में ये अशुद्ध खान पान वगैरह भोग लगाएंगे तो इस मंत्र को क्यों लगाते हो। तो शुरू से लेकर के बाबा की ये धारणा के ऊपर इतनी वाणी और उसमें जो परमात्मा की शक्ति भरी हुई थी, जो सुनने से एकदम ठप्पा लग जाता था, हमको पवित्र जीवन धारण करनी है, पवित्र खान पान खाना है, कुसंग में नहीं आना है, सिनेमा बायोस्कोप नहीं देखना है, ये गंदे बातों से दूर रहना है, तो एक एक जो आता था उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आ जाता था। तो फिर घर में कहीं भी जबरदस्ती भी खिलावे ना तो भी नहीं खाते। फिर कहीं बंधन आए क्योंकि एंटी ह्यूमनली बहुत सारे चर्चा चली, प्यूरिटी के ऊपर झगड़े हुए, तो मेरे को भी बंधन डाला भाई ये वहां जाता है तो स्कूल की पढ़ाई इनकी छूटती जाती है, रुचि वहां से निकलती जाती है, क्यों मैं जाता था तो पहले बाबा के सत्संग में जाके फिर जाता था स्कूल में, तो क्लास में लेट हो जाती थी तो मार पड़ती थी, घर में रिपोर्ट होती थी तो बंधन भी पड़ा, लेकिन जो एक बार लगन लग गई तो वो तो छूटने की है नहीं। खैर वो बातें तो लंबी चौड़ी है। फिर बाबा कराची में आ गए, हम हैदराबाद में जाएंगे तो हमको तो रहा नहीं गया, तो ऐसे भाग के घर में ऐसे बता के चले गए। फिर वहां से थोड़े दिन के बाद फिर वहां से भी ले आए, ले तो आए, लेकिन मैंने कहा हम आपके हाथ का पवित्र भोजन तो खा नहीं सकते, तो 7-8 दिन ऐसे मैंने नहीं खाया, नहीं तो छोटा बच्चा, लेकिन बाबा की वो शक्ति जो भरी हुई थी, एक बल एक भरोसा जो भरा हुआ बाबा की आज्ञा है अपवित्र हाथ का भोजन नहीं खाना है तो नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसा उन्होंने समझा बचपन का हट है, बाल हट है, अब भूख लगेगी तो कहाँ जाएगा, आकर तो खाएंगा ही। तो 5-7 दिन तो उन्होंने जबरदस्ती किया, देखा तो मैंने नहीं माना, ये तो ईश्वरी हट था ना, बाल हट तो नहीं था। तो जब देखा कि ये बच्चा तो एकदम कमजोर होता जाता है, उठ भी नहीं सकता है, तो उनको डर लगा कहा मर गया तो सभी क्या बोलेगा, बच्चे को लाके मार दिया, लोकल आज भी होती है ना, कहा अच्छा तुम अपने हाथ से बना के खाओ। मैं हाथ से बना के खाता हूँ, उन्होंने समझा 5-7 दिन 8 दिन कहाँ तक ये अपने हाथ बना के खाएगा, आकर तो उनका अभी बाल हट है तो पूरा करो उसको। लेकिन मैं जब तक रहा 3 मास वहां रहा, अपने हाथ से बिगड़ बनाए उनके हाथ का नहीं खाया, उन्होंने देखा ये तो बहुत पक्का है, आखिर उन्होंने छुट्टी दे दी, अच्छा जाओ। तो ये है किसकी ताकत, उस बाबा की ताकत जो एक एक बच्चे में इतनी शक्ति भरते थे, जो एक एक बच्चा इतना फेस कर सकता था। और फिर तो 14 बरस की भट्टी चली, तो भट्टी में तो बाबा ने बताया कैसे पकाया बैठ के एक एक को, और जब ये लायक बनाया वहां ये ज्ञान की भी राज खुलते गए, साक्षात्कार में भी संदेश पुत्रियां जाती थी, वो आके बताती थी, पर बाबा हमको भी ऐसे देते थे, हम भी बाबा की वाणियां लिखते थे, स्टोकन लाइफ तो थी तो शॉर्ट हैंड में लिख के फिर उसको शेयर करते थे। तो उन दिनों में ये झाड़ त्रिमूर्ति गोला ये सब उन दिनों में निकला, तो पहले तो झाड़ निकला बाबा ने ऐसे दिया कि ये जैसे जीनियालॉजिकल ट्री होता है ना भाई, बड़ा बाप होता है पर उनके बच्चे, पर उनके बच्चे, उनके बच्चे, इसीलिए जिसे पहले ब्राह्मण से देवी देवता धर्म निकलता है, फिर उनसे कैसे आधे कलम के बाद ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह आते हैं। पर बाबा ने कहा ये इसका चित्र बनाओ, तो संदेश पुत्री भी जाके देख के आई कि झाड़ का चित्र, तो बाबा ने बैठ के विश्वरतन दादा से वो डिजाइन निकाली, तो झाड़ का ऐसे चित्र बन गया। तो बाबा ने उसके ऊपर समझाना शुरू किया। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा इसमें बाकी एक नुक्स है। बोला क्या है? बोला इसमें रिपीटेशन का बाबा लाभ नहीं आता है, झाड़ बढ़ तो गया लेकिन फिर कलम के बाद फिर वही फिर से शुरू होता है, इसमें रिपीटेशन को कहा वो कैसे आएगा। मैंने कहा इसका अगर गोला बना देवे ना तो आएगा। कहा निकाल के दिखाओ, तो मैंने रफ गोला निकाला जो निकाला। फिर उसको करेक्शन किया बाबा ने, संदेश पुत्री से भी पूछा, संदेश पुत्री भी को भी बाबा ने साक्षात्कार में दिखाया, तभी ये गोला बना। तो बाबा को इतना अच्छा लगा तो कहा बच्चा तुम्हारा बुद्धि तो बड़ी अच्छी चलती है। तो ऐसे ऐसे बाबा उमड़ दिलाता था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसमें बड़ी बड़ाई मेरी नहीं है, लेकिन बाबा ऐसे हमारी बुद्धि को डेवलप करता था। और तभी बाबा ने एक बार वाणी चलाई, देखो एक एक बच्चा कितना सौभाग्यशाली है जिनका भाग्य देख के बाप भी खुश होता है। पर बाबा ने ये कहानी बताई, भाई एक शास्त्र में कहानी आती है चंद्रास की, तो मेरे को तब से चंद्रास नाम दे दिया कि भाई देखो ये बच्चों का, तुम बच्चों का कितना सौभाग्य है जिनके भाग्य को देख के बाप भी खुश होता है। एक शास्त्र में कहानी आती है तो उसमें शॉर्ट में ऐसी है कि चंद्रास था एक राजा का बेटा था, आपने पढ़ी भी होगी शायद शास्त्रों में आती है। तो राजा का बेटा था, तो राजा के पड़ोस के राजा वाले राजा ने, दूसरे राजा ने उसके ऊपर चढ़ाई की, तो उसके बाप को मार दिया, उसकी गद्दी छीन ली। तो बेटे को ऋषि लोग थे, वहाँ ऋषि आश्रम था एक, वो ले गए छिपा के, नहीं तो ऋषि लड़के को भी ये मार देगा राजा, उसीलिए उसको ले गए जाके आश्रम में पाला। तो राजा जो जीत कर आया उसने ऋषियों को आप ब्रह्मा भोजन रखा, तो उन बच्चे को भी बुलाया को लेके गए साथ लोग अपने साथ ब्रह्मा वो उसी राजा के महल में। तो जब वो भोजन कर रहे थे तो ऋषि लोग हंसने लगे, तो उसी उसने बहुत से प्लान बनाए कि उसको मार देवे। तो बहुत लंबी कहानी है, उसके बहुत साधन किए कि इस लड़के को मार देवे, उसको चिट्ठी लिख के अपने राज्य में भेजा दूसरी, तो उसमें अपने बेटे को लिखा कि इसको विष दे दो, ये लड़का आता है उसको विष दे दो। तो वो चिट्ठी लेके जब वो लड़का गया वहां पे, तो बगीचे में लेटा पड़ा था, तो उसकी राजा की बेटी वो आई बगीचे में घूमने, तो उसने लड़के को देखा, तो देखा उसके खेत में कोई चिट्ठी पड़ी है, वो खोल के देखी तो ये तो मेरे बाप की लिखी हुई है, इसमें लिखा गया थी लड़के को विष दे देना। तो उसने विष को विष या कर दिया, या आगे जोड़ दिया, तो विषया था उस लड़की का नाम। तो लड़के ने समझा कि बाप ने लिखा है कि विषया इसको दे दो, यानी मेरे लड़के की इससे शादी करा दो, ऐसे कहानी में लिखा है। यानी बाबा का मतलब दादा भाई किसके भाग्य में है, वो किसको कितना भी मारने की कोशिश करे लेकिन वो आखिर वो उसी गद्दी पर बैठ जाता है। पिछाड़ी में कहानी का लेसन, तो बाप भी तुम बच्चों के भाग्य को देखते हैं, तो माया कितनी भी विघ्नता ले लेकिन तुम बच्चों के भाग्य में स्वर्ग की बातें लिखी है तो वो मिलनी जरूर है, चाहे वे बीच में कितनी भी विघ्न आ। तो मैं तो एक चंद्रास नहीं हूँ, आप सभी भी चंद्रास है, क्यों एक एक भाग्य में क्या है, सर की पाती लिखी हुई है ना। तो हम एक एक बच्चे को बाप देख के इतना खुश होता है, तो हमको कितना नहीं अपने भाग्य पर लाभ होना चाहिए। आपको पता है बाप की तो बाबा की तो ऐसे बहुत सारी मुरलियां ऐसी अच्छी अच्छी है, जो मेरा सौभाग्य था तो बाप के सामने बैठ के ये सारी टेक्स करता था, और वो टेक्स इमानत तो लिखी हुई है। जैसे वो खजांची है ना, यीशु खजांची है हमारे स्तूलन की, हमारे पास है ज्ञान रत्नों का खजाना। तो कभी कभी हम सुनते हैं ना बड़ी अच्छी प्यारी बोलियां लगती है। आज तो मेरा विचार था पहले आपको टेक्स सुनाऊं, लेकिन खैर अभी तो टाइम शॉर्ट है, फिर कोई टाइम मिलेगा ना आपको बाबा जी एक दो टेप सुना देंगे। बहुत अच्छे प्यार भरी बाबा ने एक टेप में तो बाबा ने कहा है, देखो बच्चे वो एक गीत चल रहा था जिसमें था वो लड़ाई थी है और तूफान की, सुना होगा, निर्बल से लड़ाई बलवान की। हाँ। तो बाबा ने कहा कि देखो तुम भी एक एक दीपक हो और तुम दीपकों को अपनी खुद संभाल करनी है कि हमारा दीपक जो है ज्योति जो है वो बुझे नहीं, उसमें ज्ञान और योग का गिरत जो है वो डालते रहना है। तूफान तो आएंगे, माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन तुम बच्चों को एक एक दीपक को संभाल करनी है। वो तो जब मरते हैं तो दीपक जला के रखते हैं, लेकिन तुम तो मरने की तैयारी कर रहे हो, मरना है ना, जीते की मरना है, यहाँ आए किस लिए, जीते की मरने के लिए ना, तो अपने को मार करके जीते जी मर करके वो दीपक जला के रखना है जिसमें ये ज्ञान और योग का दीपक गिरते गए वो डालते रहना है, जो सदैव दीपक जलता रहे, कभी बुझे नहीं, कभी धीमा भी नहीं हो, कभी दीपक गिरत थोड़ा कम हो जाता है तो दीपक थोड़ा डिम हो जाता है ना, तो डिम भी नहीं होना चाहिए। उसी लिए ये बाबा दिन प्रतिदिन ये सब प्रोग्राम क्यों देते हैं, बच्चे सेवाएं तो बहुत करते हैं, वो सेवा में क्या है, कई बार हमको अपना पुरुषार्थ भूल जाता है, हम दूसरे को पुरुषार्थ करने में लग जाते हैं, दूसरों को बहुत भाषण करते हैं, समझाते हैं, करते हैं, लेकिन हमारे अवस्था की उन्नति कैसे हो, हमारा दीपक भी जगता रहे, वो कभी कभी भूल जाते हैं। उसी लिए बाबा ये प्रोग्राम रखते हैं कि मेरे बच्चे पहले खुद जगे रहे, हम कुकुर ज्ञानी हो, बाबा कहते हैं कुकुर ज्ञानी उसको जो खुद दूसरों को ज्ञान देते हैं और खुद नहीं जीवन में धारक है, लेकिन हमको तो पहले अपने जीवन में धारक करना है, हमारा लक्ष्य पहले ही है। उसीलिए शुरू में क्या था, जब जो भी बच्चे थे ना मधुबन में, उन सबका बाबा ने चित्र निकाला, कहा देखो तुमको स्वर्ग में जाना है ना, तो जैसे फॉरेन में जाते हैं ना तो तीन चार फोटो निकालते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो पता होगा, तो तीन फोटो निकालते, बाबा ने कहा तुम बच्चों के भी तीन फोटो होने चाहिए, क्यों परदेश में चलते हैं ना, स्वर्ग में चलते हैं ना, तो तीन फोटो चाहिए, कौन सा, फिर फोटो निकलवाए, एक तपस्वी मूर्त ऐसे बैठे हैं तपस्या में, तो ये याद रहे कि मैं त्यागी और तपस्वी हूं। जैसे अभी कहते हैं बाबा, कई बार कहते हैं भाई वो बैज लगा रहे, बैज को देखते रहो, कई मुर्गियों में भी आता है ना, तो उन दिनों में बाबा कहते हैं ये फोटो अपने साथ रखो और देखते रहो कि मैं त्याग और तपस्वी मूर्त हूँ, वो मेरे भूले नहीं, ऐसे नहीं ये सब साधन वगैरह ये सब देख के उन साधनों में लग जाओ, साधना होते हुए भी साधना नहीं भूलनी चाहिए, हम त्याग मूर्त है, तपस्वी मूर्त है, वो न भूले, उसीलिए वो त्याग और तपस्या का फोटो साथ में रखो। तो त्याग और तपस्या से क्या बनेंगे, फरिश्ता, लाइट स्वरूप, ये शरीर भी भूला हो, ये शरीर जैसे लाइट का शरीर है, लाइट के कारण में जैसे बाबा ने उस दिन भी इस मुरली में सुना था, बाबा ने कहा जैसे बाप आए हैं ऊपर से ना किस लिए, स्वर्ग की स्थापना के लिए ना, वैसे तुम बच्चे भी समझो हम भी ऊपर बाप के साथ आए हैं इसी भारत को इसी विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए, तो तुम भी मेरे एक एक बच्चा जो है मेरी भुजाएं हो, हम आप सब क्या है, ब्रह्मा की भुजाएं हैं, ब्रह्मा के साथी हैं, ब्रह्मा के मददगार हैं, तो जैसे बाप हमारा बाबा, एक बार बाबा ने मुरली में कहा कि साकार बाप को याद मत करो, साकार ब्रह्मा से कुछ नहीं मिलने का है, किससे मिलने का है, शिव बाबा, मैंने कहा बाबा आप क्यों ठगी करते हैं हम बच्चों से, ब्रह्मा बाबा से कुछ नहीं मिलने का है। अरे ब्रह्मा बाबा के पास जो खजाना है वो शिव बाबा के पास भी नहीं है, हम किसको फॉलो करते हैं? ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रख के हमको ब्रह्मा बाबा के गद्दी पर बैठना है, अगर नारायण की गद्दी जीतनी है तो ब्रह्मा को फॉलो करना है। सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण समूल संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम कौन बनता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। उसको कदम पे कदम रख के हम जितना फॉलो करेंगे उतना उनके गद्दी के नशीन बनेंगे, गद्दी के वारिस बनेंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा हमारा त्याग तपस्या से फरिश्ता बन गया, वैसे हमको भी फरिश्ता बनना है। तब भी हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। तो ये बाबा ने तीन चित्र एक एक बच्चे के निकाले, एक तपस्वी मूर्त, एक फरिश्ता मूर्त और एक देवता मूर्त। ये तीनों का इनको देखते रहो, जैसे एम ऑब्जेक्ट सामने होती है वैसे एम ऑब्जेक्ट नित्य सामने हो, तो हम कौन है, क्या बनना है और कहाँ जाना, तभी तुम बच्चे पूजनीय बनेंगे। बाबा कहते हैं हमारी तो खाली गायन और पूजन होता है, लेकिन तुम बच्चों का तो आधार कलश से कितना कितने पूजन होते हैं। देवियों के देखो चित्र बना के कितनी पूजा करते हैं, शिव का तो खाली एक शिवलिंग बनाते, उनका तो एक ही रूप में पूजन होता है, लेकिन हमारा कितने पूजन होते हैं। तो इतना बाबा हम बच्चों को, इसीलिए हम देखते थे बाबा हमारा जितना ही ज्ञान मूर्त तपस्वी मूर्त इतना ही पर निर्माण चित्त। निर्माण का तो मैं क्या वर्णन करूं, हमने ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकल में देखा, इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कभी कभी कोई बच्ची बहुत अच्छी सेवा करके आती थी, थैंक यू बच्ची बहुत अच्छी सेवा की, बहुत बाबा का नहीं तो बाबा और थैंक यू कहे। इसीलिए बाबा कहते थे वाणी में भी देखते हैं रोज, रवाणी चला के पिछाड़ी में नमस्ते करते थे। इतनी बड़ी हस्ती हम बच्चों को नमस्ते करते, ऐसे अनेक हमने तो मिसाल देखे, क्या मैं वर्णन करूं। ब्रह्मा बाबा के हमारे शिव कुमार ने भी बहुत कुछ अनुभव किया है, छोटेपन में आए और इनका भी भाग्य है कि उस बाप के हाथ का लालन पालन की देखा है। तो ऐसे त्याग तपस्वी और निर्माण चित बाबा के बच्चे हम जितना जितना बाप को फॉलो करेंगे उतना उतना उनके तख्त के अधिकारी बनेंगे। ऐसे त्याग और तपस्वी मूर्त बाप दादा के भुजाएं, आज तो हम देखते हैं इतने कितना हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, और बाबा ने तो एक वाणी में कहा इतने होंगे कि हमारे पास इतने देगड़े ही नहीं होंगे जो इतने सबका इकट्ठा भोजन बन सके, और देख रहे हो कितना हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। अभी तो नीचे भी आपके लिए इतना बड़ा प्रबंध हो रहा है, जहाँ 10,000 बच्चे आके बाबा से मिलेंगे तो क्या होगा, कुंभ का मेला लग जाएगा। इतना हमारा परिवार तेजी से, जब से बाबा अव्यक्त हुए हमने देखा है इतनी सेवाएं बड़ी है, और यह सब किसकी शक्ति है? वो बाबा ऊपर से हम बच्चों के द्वारा निर्मित हुआ है, हम तो जैसे कठपुतलियां है, चलाने वाला वो है, करवा घोड़ा है। हमने तो अनेक बार देखा है, नहीं तो ये छोटा बच्चा है इनको क्या पता ये क्या सेवा कैसे होती है, लेकिन बाबा इनको कहते बच्चे ये काम करना है, हाँ जी बाबा, और वो आप याद, मैं जानता मैं छोटा आया हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े, और मेरे को क्या पता मकान कैसे बनता है, बाबा ने कहा बच्चे तुमको ये सब मकान बनाने हैं। हाँ जी। और ये सारे पांडव वन देख रहे हो ना कैसे बन गया, मैंने बनाई। वो देखने में जैसे शिव बाबा ब्रह्मातन में आके मुरली चलाते हैं, देखने में तो ब्रह्मा आता है लेकिन चलाने वाला कौन है, वो है ना। ऐसे हम भी निर्मित है, कठपुतलियां है, वही हम बाबा हमारे से वही शिवाय करा रहे। हम खाली निश्चय बुद्धि होके बाबा की श्रीमत कर सके, बाबा की आज्ञा का फॉलो करें। और सदैव ये ख्याल में रखे जैसे कर्म हम करेंगे वैसे हमको देख के पीछे आने वाले हमको फॉलो करेंगे। हम बाप को फॉलो कर रहे हैं, दूसरे आपको फॉलो करेंगे। तो वो अगर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है तो हम भी तो उनके बच्चे हैं। हमको फॉलो करने वाले जो हम अगर कुछ गलत करते हैं तो हमको फॉलो करने वाले अगर गलत करते हैं तो उसका बोझा किसके ऊपर, हमारे ऊपर आ जाता है। उसीलिए ये सदैव ध्यान रखे कि हम बच्चों को बाप का शो करना है। उसीलिए हम किसको दुख न देवे, हम किस कोई ऐसी वैसी बात न करें जिससे बाप का नाम बदला। हमारे ऊपर ये जवाबदारी आ जाती है, एक एक को बाप का शो करना है तो अपने चरण से। हम शुरू में देखते थे, शुरू में हम जब भी लोग संबंधियों के पास जाते भी थे ना वो हमारा ज्ञान सुनते नहीं रहे, नहीं ये ज्ञान अपने पास रखो, दादा का ज्ञान हमको मत सुनाओ, अच्छा मत सुनो। बाबा कहते कोई ज्ञान नहीं सुने ना, सुनाने का खाली मुख द्वारा सेवा नहीं होती है, पहले ये कर्म सेवा। अपने जीवन को प्रैक्टिकल उनके सामने रखो और हमारी जीवन देख के ही वो प्रभावित हो जाते थे। तो जो हमारी जीवन प्रैक्टिकल जीवन जो सबूत उनको देंगी वो हमारी वाणी नहीं देंगी। वाणी चलाने वाले तो बहुत बैठे, भाषण करने वाले तो हमारे हाथ से बहुत होशियार बैठे, लेकिन बाबा हमारी जीवन बनाते हैं तो दूसरों की भी जीवन तब बनेगी जब हमारी जीवन प्रैक्टिकल में आए। तो ऐसे ही हमको बाप का भी भुजाएं बन के बाप का शो करना है, यही बाबा की रिटर्न सर्विस है। जो बाबा हम बच्चों के पीछे इतनी सेवा किया है उनके अगर आपको रिटर्न देनी है तो बाप को फॉलो करके दे। फिर कभी टाइम मिलेगा तो आपको बाबा के मधुर महावाक्य भी सुनाऊंगा। और कुछ पूछना है? लोग तेरे नाम तो भूल गया, मेरे को भी भूल गया। ऐसे लौकिक नाम माधव है। बाबा का जिया हुआ नाम चंद्रास है और अव्यक्त नाम तीसरा है। यदि तीन फोटो बाबा ने लिखा देना तो वैसे अलौकिक अव्यक्त नाम है गुलजार मोहन। हाँ, जैसे दादी का भी लौकिक नाम दूसरा है लेकिन बाप का प्यार का दिया हुआ, बाबा उनको कुमार का दादी कहते थे क्योंकि बेटे के समान थी। बाबा बहुत उनको सेवा पर भगा देते, बिठा दे नहीं दे, कहते थे जाओ इधर जाओ। एक टाइम तो ऐसे हुआ कि एक बार दिल्ली से निमंत्रण आया तो ईशु दादी जी कैशर न, तो उनके लिए आगे ईशु दादी के यहाँ सेवा के लिए बहुत जरूरत है, ईशु दादी को भेज दो। बाबा ने ईशु को भेज दिया। कुमार का दादी ने कहा तुम ये कैश पर बैठो, कैश है पोस्ट है। फिर दादी को भी निमंत्रण आया पटना से, दादी को भेजो यहाँ बहुत सेवा है। तो दादी ने कहा मैं कैसे जाऊंगी, कहा क्यों नहीं जाएंगी, बाबा बैठा है ना, तुम जाओ अपनी ड्यूटी चंद्रास भाई चंद्रास बेटे को देखे जाओ। तो मेरे को देखे दादी को भी भेज दिया। तो बाबा के बाबा पहले सेवा, कहां सेवा से निमंत्रण आया, बाबा कहां से भी कहेगा चलो, पहले सेवा। और फिर बाबा सेवा पर भेज के फिर ज्ञान रतन उनको फिर जैसे नहीं होता है, कोई मिलिट्री लड़ाई पर जाती है तो उनको पीछे में बारूद चाहिए ना, तो बाबा पर बैठ के वाणियां इतनी उनके लिए पॉइंट्स वगैरह लिख के, तो कहता था ये ले जाओ। एक बार दादी को भेजा, जब जापान से लौटी दादी तो दादी को भेजा एक चित्रकूट में थी साधु सम्मेलन, वहां से नमन सुना है, तो दादी को वहां से लिखा तुम जाओ तीनों जानो जाओ साधु सम्मेलन में भाषण की निमंत्रण है। यहाँ से फिर बाबा ने बड़ी पत्र लिखा बैठ के 40 पेज का, उनको ऐसे समझाना ऐसे समझाना ऐसे समझाना ऐसे समझाना। अब 40 पेज का पत्र, मम्मा को कहा ये इनको कैसे पहुंचाएं, बच्चों को तो जरूर जाना चाहिए, ये फौरन मिलना चाहिए, बारूद मिलना चाहिए, वो युद्ध के मैदान में गए है। तो कहा चंद्रदास बेटे को बुलाओ, चंद्रदास तुम ये पत्र लेके जाओ। मैंने कहा मैं जाऊं खास पत्र लेके, मैं एक्सप्रेस डिलीवरी करके भेज देता हूँ पोस्ट में। कहा बच्चे तुमको ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है, बोलो स्थूल रत्न होते जवाहरात होती तो तुम बोलते पोस्ट में भेज दो, उस स्थूल रत्नों का इतना कीमत है और इन ज्ञान रत्नों का तुम बच्चों को कीमत नहीं है, कदर नहीं है। मैंने कहा नहीं बाबा आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। वो पत्र लेके खास मैं यहाँ से चित्रकूट गया दादी को देने के लिए, क्योंकि उनको वहां भाषण पढ़ना था। बाबा को इतना रहता था कि बच्चों को ज्ञान रतन मिलने चाहिए जो वो सेवा करे, ये सब बाबा हमको सिखाते थे। एक बार मुंबई में फंक्शन था, बाबा ने बैठ के खास वाणी चलाई, फिर वो टेप भरा, मेरे को बोला फौरन कॉपी निकालो, कॉपी निकाली, विश्व रतन साधु को कहा जाओ तुम ले जाओ मुंबई में। वो अहमदाबाद से तक गया तो वहां बारिशों में ट्रेन बंद थी, तो बाबा से पूछा बाबा क्या करें, कहा प्लेन में जाओ। और प्लेन में जाके उनको टेप दिया, बाबा को इतना एक्यूरेट सेवा का रहता था। तो ये सब क्या है, ये सब बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि ज्ञान रतन जो है, एक एक रतन जो है वो हीरे तुल्य है, यही रतन जब ताज हमारे ताज में बनेंगे जितना जितना हम ये ज्ञान रतन धारण करेंगे। अच्छा ओम शांति।